अध्यात्म का पहला पाठ कर्मयोग। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो अपने व्याख्यान की तैयारी करने लगे।
इस बीच बहुत से लोग उनसे मिलने आए। उन समझदार आदमियों में से एक ने उनसे यह सवाल किया, क्या आपने हिंदुस्तान में यह ब्रह्म विद्या सिखा ली?
हिंदुस्तान में ज्ञान और धर्म का प्रचार हो गया,
जो इतना लंबा सफर करके आप हम लोगों को ज्ञान देने और शिक्षण करने के लिए यहाँ आए?
बड़ा नाजुक सवाल था।
इसका जवाब उन्होंने मजाक में, दिल्लगी में नहीं दिया,
उन्होंने बड़ा गंभीर जवाब दिया।
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा भारतवर्ष तमोगुण में डूबा हुआ है, आप एक क्लास आगे बढ़ गए हैं, आप रजोगुण में हैं,
इसलिए हम अब आपको आगे वाला सतोगुण का पाठ सिखाने आए हैं।
हम न तो आप लोगों को भजन करने की शिक्षा देने आए हैं, न सेवा करने की शिक्षा देने आए हैं, न पूजा करने की शिक्षा देने आए हैं, न संयम करने की शिक्षा देने आए हैं।
क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं, अतः सामर्थ्यवान को त्याग की शिक्षा दी जा सकती है, ज्ञान की, ध्यान की शिक्षा दी जा सकती है,
प्रेम की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जो आदमी भूखो मर रहा है, उस भूखे मरने वाले को आप ज्ञान की, ध्यान की और त्याग की शिक्षा कैसे दे सकते हैं और वैराग्य की शिक्षा कैसे दे सकते हैं?
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदुस्तान ने अध्यात्म का पहला पाठ पढ़ना शुरू किया है, जिसका अर्थ है कर्मयोग। हम हिंदुस्तान को कर्मयोग सिखाते हैं और आप लोगों को भक्तियोग सिखाते हैं।
इसलिए सिखाते हैं कि दोनों क्लासों में फर्क है। हिंदुस्तान हजारों वर्षों की गुलामी से अभी अभी निकल करके आया है, वह घोर तमोगुण में पड़ा हुआ है। हम और आप कहाँ हैं? घोर तमोगुण में पड़े हुए हैं। तमोगुण किसे कहते हैं?
तमोगुण कहते हैं जड़ता को, महाराज जी।
तमोगुण गुस्से को भी कहते हैं। हाँ, गुस्सा को भी कहते हैं, पर वास्तव में तमोगुण आदमी की जड़ता को कहा गया है।
जड़ आदमी को तमोगुणी कहते हैं।
यह प्रकृति तमोगुण में है। इसमें पानी पैदा होता है और पानी में काई पैदा होती है। मिट्टी के भीतर जीवाणु भी पाए जाते हैं और वे जिंदा होते हैं। वे घास फूस पेड़ पौधों में इकट्ठे हो जाते हैं।
जीवाणु इन सबके अंदर हैं, किंतु वे तमोगुणी हैं। मित्रों,
हमारा सारा देश तमोगुणी अवस्था में पड़ा हुआ है,
इसलिए अगर हमारे यहाँ किसी समझदार आदमी को अध्यात्म का शिक्षण देना हो तो उसे उसी खुराक का और उसी वजन का देना चाहिए जैसे बच्चे को खुराक दी जाती है। बच्चे को आप मिठाई खिलाएंगे? नहीं, मत खिलाएगा। बच्चे को आप हलवा खिलाएंगे? नहीं, मत खिलाइए, बच्चा बीमार पड़ जाएगा।
इसके लिए बिस्कुट देने की जरूरत है, हल्का भोजन, फलों का जूस देने की जरूरत है।
भारी भोजन ये हजम नहीं कर सकते। इसी तरह हम इनको अध्यात्म सिखाएं, ज्ञान ध्यान की बात सिखाएं, भक्ति की बात सिखाएं, कुंडलिनी जागरण की बात सिखाएं, बेटे यह बिल्कुल बेकार है, इससे हमको कोई फायदा नहीं हो सकता। मित्रों,
उन्होंने कहा कि पहला वाला चरण जिसकी अपने देश में शिक्षण करने की जरूरत है, उसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग क्यों? इसलिए कि हम अपनी मनोभूमि में तलाश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी हैसियत कहाँ है और आप क्या चीज चाहते हैं। अपने हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि यहाँ हर आदमी एक चीज मांगता है और वह है पैसा। क्यों मांगता है? क्योंकि वह दरिद्र है, कंगाल है।
कंगाल को पैसा चाहिए, दरिद्र को पैसा चाहिए।
बेटे, हम बड़े भूखे हैं, बड़े कंगाल हैं, बड़े नंगे हैं और बड़े गरीब हैं। कंगाली हमारे रोम रोम में छा गई है। न हमारे मकान का ठिकाना है, न शरीर का ठिकाना है। हर जगह हमारे ऊपर मुसीबत छाई हुई है। इसलिए हम भगवान से पैसा मांगते हैं, क्योंकि असल में हमारी जो हैसियत है वह कंगालों की है, दरिद्रों की है। कंगाली को दूर करने के लिए वहाँ, कंगाली को दूर करने के लिए कौन सा मंत्र काम कर सकता है, कौन सा जादू काम कर सकता है?
जो विधि, जो मंत्र और योगाभ्यास आपके लिए काम कर सकता है, उस योगाभ्यास का नाम है कर्मयोग।
वही आपकी खुराक और आपकी जरूरत को पूरा करने वाली चीज है।
यानी अभी आपको ठहरना चाहिए और आपको इंतजार करना चाहिए। मित्रों, आप पहली वाली क्लास पास कर लीजिए, प्राइमरी कक्षा पास कर लीजिए, फिर हम आपको हाई स्कूल की बात बताएंगे, फिर आपको कॉलेज की बात बताएंगे।
अभी से हम आपको वैराग्य की क्या बात बता सकते हैं? कहा भी गया है, धोबी बसकर क्या करे, बैरागी के गांव। एक गांव में बैरागी रहते थे।
वहां आकर धोबी भी ठहर गया। धोबी ने कहा, स्वामी जी, लाइए कपड़ा दीजिए, हम धो देंगे। स्वामी जी ने कहा, अरे बाबा,
हमारे पास एक लंगोटी है जिसे हम अपने आप धो डालते हैं। आप क्या कहते हैं स्वामी जी?
लाइए कुर्ता दीजिए, पैंट दीजिए, हम साफ कर देंगे। अरे बाबा,
पैंट कहाँ से आया?
केवल लंगोटी है।
तो क्या इसे दान करेंगे? इसे क्या दान करेंगे आप? आप तो केवल अपनी गरीबी दान कर सकते हैं, अपनी कंगाली दान कर सकते हैं, अपनी बुजदिली दान कर सकते हैं, और अपना दैख और दारिद्र्य दान कर सकते हैं। और आपके पास दान देने के लिए है क्या?
इसलिए मित्रों,
दान देने के लिए, उदार बनने के लिए और सेवा करने के लिए तो आपके पास सामान चाहिए न, कुछ तो होना चाहिए न।
नहीं साहब, हम सेवा करेंगे। आप किससे सेवा करेंगे?
अक्ल आपके पास है नहीं, शरीर आपके पास है नहीं, स्वास्थ्य भी आपके पास नहीं है, बुद्धि भी आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर आप किससे सेवा करेंगे बताइए न।
सेवा करने के लिए माध्यम चाहिए, शक्ति चाहिए।
शक्ति इकट्ठी करने के लिए आपको और हमको क्या करना पड़ेगा?
हमको कर्मयोग का आश्रय लेना पड़ेगा।
कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्मयोग उसे कहते हैं जिससे संपत्ति पैदा होती है, दौलत पैदा होती है और धन पैदा होता है। एक बार देवता और दानव, देव और असुर बड़ी गरीबी में, कंगाली में बैठे हुए थे, बड़ी परेशानी में बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा।
पैसा कहीं से नहीं आएगा, पैसा हमारे हाथों से निकलता है और अकीमे से निकलता है।
नहीं साहब, पैसा भगवान जी से निकलता है, लक्ष्मी जी से निकलता है।
बेटे, यह हमारी पूंजीवादी आस्था है, इसलिए हमको लक्ष्मी जी से भी पैसा मिल सकता है।
लक्ष्मी जी से क्या मतलब है?
लक्ष्मी जी से मतलब है जुआ, लक्ष्मी जी से मतलब है सट्टा, लक्ष्मी जी का मतलब है लॉटरी, लक्ष्मी जी का मतलब है बाप दादे की हराम की कमाई।
लक्ष्मी जी से आपका यही मतलब है ना?
हाँ साहब,
यही मतलब है। आपकी परिभाषा यही है कि बिना परिश्रम किए, बिना योग्यता के जो धन मिल जाता है, उसी को लक्ष्मी जी कहते हैं ना?
हाँ साहब,
हम तो उसी को लक्ष्मी जी कहते हैं।
ठीक है, हम आपकी बात समझ गए।
बेटे, लक्ष्मी जी इस तरीके से नहीं मिलती।
लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं?
लक्ष्मी जी आदमी की कलाइयों में रहती हैं, भुजाओं में रहती हैं, आदमी के परिश्रम में रहती हैं, आदमी की समझदारी में रहती हैं और आदमी की अक्लमंदी में रहती हैं।
देवता और दैत्य विचार करने लगे कि लक्ष्मी जी को कहाँ से पाएं।
ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्खों,
इंतजार करने से कहाँ मिलेगा? जाओ, समुद्र में पहुंचो और दोनों साथ साथ में मिलकर समुद्र का मंथन करना शुरू कर दो और अपनी कलाइयों से इसको मत डालो।
देवता और दानव दोनों चले गए। उन्होंने सोए हुए समुद्र को, खारे वाले समुद्र को मत करके फेंक दिया।
उसमें से क्या क्या चीजें निकली थी?
पुराणों में मैंने सुना है कि सूरज निकला था, चंद्रमा निकला था, लक्ष्मी जी निकली थी, ऐरावत हाथी निकला था,
बहुत चीजें निकली थी।
महाराज जी,
समुद्र में से सूरज निकल सकता है?
बेटे, तू बेकार में पुराणों के अलंकारों पर बहस करता है।
बहस करने की बात नहीं है, पुराणों में जो अलंकार बताए गए हैं वे केवल संकेत हैं, दिशा हैं और किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए बताए गए हैं।
इनको आप इतिहास मानते हैं? यह इतिहास नहीं हो सकता।
नहीं महाराज जी, समुद्र में से सूरज नहीं निकल सकता।
चल बेटे, हमने मान लिया कि समुद्र जरा सा है और सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि हमारा प्रयत्न और पुरुषार्थ, जिसके लिए यह कहानी बनाई गई है, यह कहानी इसलिए बनाई गई है कि लोगों को यह बात समझाई जा सके और लोगों के गले में उतारी जा सके कि अगर आपको संपन्न बनना है, समृद्ध बनना है, मालदार बनना है, दौलतमंद बनना है, विद्वान बनना है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा
और उसका नाम है कर्मयोग और पुरुषार्थ।
समुद्र मंथन की कथा इसी दृष्टि से है। सारी की पौराणिक कथाएं इन्हीं शिक्षाओं, प्रेरणाओं से भरी हुई हैं।
स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। टोक्यो विश्वविद्यालय में वेदांत और ब्रह्म विद्या के ऊपर उनका व्याख्यान होना था।
उन्होंने लोगों से कहा कि हमारी इच्छा है कि पहले हम जापान और जापानियों को देख लें कि उनके रहन सहन का तरीका क्या है, तब हम व्याख्यान देंगे।
जब तक हमको यह न मालूम पड़ जाए कि जिन आदमियों के सामने व्याख्यान देना है उनका रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार कैसा है, तब तक व्याख्यान देने वाली बातें बेकार हैं।
स्वामी रामतीर्थ जापान के सारे के प्रांतों में घूमने के लिए गए।
वहां पर उन्होंने देखा कि जापान, जो समूचे एशिया का मुकुटमणि बना हुआ है, जिसे देखकर अमेरिका कांप गया था कि जरा सा जखीरा, छोटे छोटे टापुओं का जरा सा देश एक दिन सारी की दुनिया पर छा जाएगा।
यह बड़ा शक्तिशाली देश है, समर्थ देश है, यह बड़ा मालदार देश है।
आपको मालूम होगा कि उसने अमेरिका पर हमला किया था, तब उसको तबाह करने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम बरसाए थे।
मित्रों, जापान के बारे में, जापान की मालदारी के बारे में हम क्या कह सकते हैं?
एक बार जापान ने दुनिया को ऐसा चकमा दिया था कि मालूम पड़ता था कि पैसे की दृष्टि से वह सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम कर लेगा।
सन 1930 की बात है।
हमने 22 रुपये में एक नई जापानी बाइसिकल खरीदी थी और 3 रुपये का कुछ और सामान लगा था। इस तरह 25 रुपये की साइकिल खरीदी थी।
जब यह पता लगाया कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर कितना टैक्स लगाया है, तो मालूम पड़ा कि 25% टैक्स देना पड़ा,
अर्थात 22 रुपये की साइकिल के ऊपर 7-8 रुपये टैक्स देना पड़ा।
तब वह कितने की रह गई?
15 रुपये की रह गई।
उसमें से पानी के जहाज का किराया देना पड़ा,
पैकिंग का पैसा लगा,
दुकान वालों का कमीशन अलग से देना पड़ा होगा। फिर साइकिल वहाँ से कितने में चली थी?
10 रुपये में चली थी।
इस तरह किसी जमाने में जापानी साइकिल दुनिया में छा गई थी। तब जापान हर चीज में सारी दुनिया में छा रहा था, सारी की दुनिया की दौलत को अपने यहाँ जमा करने के लिए प्रयासरत था।
जापान शक्तिशाली देश था, ताकतवर देश था और फौजी देश था किसी जमाने में, जैसे आजकल आप रूस और अमेरिका को मानते हैं। यह जमाना था 25-50 वर्ष पहले का, जब जापान सारी दुनिया का मुकुटमणि बना हुआ था। एक ऐसा संपन्न देश, ऐसा समृद्ध देश, ऐसा ताकतवर देश, ऐसा बलवान देश, स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत देश था जापान, जहां स्वामी राम गए थे।
उन्होंने कहा कि भगवान की सारी कृपाएं इस जापान को मिली हुई हैं। वह चीजें जो आप चाहते हैं जापान जाकर देख लें, आप पाएंगे कि गायत्री माता की, हनुमान जी की और शंकर जी की सब कृपा उनके ऊपर है।
कौन सी? वही जो आप रोज याद करते हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजना आयु प्राण प्रजा पशु कीर्तिम द्रविण ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। मित्रों,
ब्रह्मवर्चस तो उनके पास नहीं है, लेकिन बाकी 6 चीजें उनके पास हैं।
जहां कहीं भी जाइए, शरीर फरौलाद जैसे ढले हुए, मालदार आदमी, मजबूत आदमी, ताकतवर आदमी, पैसे वाले आदमी आप देख लीजिए,
भगवान की सारी कृपा उनके पास है। जापान में आप चाहे जहां अंदर जाकर देख करके आइए।
स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि देखूं तो सही, यह मालदारी कहां से आ गई?
कौन सी भगवान की कृपा हो गई? हमारे हिंदुस्तान वालों पर नहीं हुई और जापानियों पर हो गई। क्या वजह है? उन्होंने फैक्ट्रियों में जाकर देखा कि प्रत्येक फैक्ट्री में 2 राक्षसों में कुश्ती हो रही थी।
2 पहलवान अखाड़े में मजबूती के साथ लड़ रहे थे।
फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई थी और एक मजदूर खड़ा हुआ था। मशीनें भी तेल की बूंदों के रूप में पसीना टपका रही थीं और मजदूरों को भी पसीने टपक रहे थे। अपनी पूरी ताकत से ड्रिल मशीन और लेंथ मशीन के ऊपर इस तरीके से मुस्तदी से लगे हुए थे, मानो दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हों। मशीन आदमी से कहती है कि हम तुमको थका देंगे और आदमी मशीन से कहता था कि हम तुमको थका देंगे। दोनों आपस में इसी कदर लड़ भिड़ रहे थे।
स्वामी रामतीर्थ लाल पीले कपड़े पहन करके गए थे।
लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि जापान में तो कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता, जापान में तो कोई व्यक्ति सिर मुड़ाकर नहीं रहता। उन्होंने देखा कि यह कौन आदमी आ रहा है। लोग हंसे तो जरूर, लेकिन फिर से मशीनों के काम में लग गए। यही नज़ारा उन्होंने सारी फैक्ट्रियों में देखा। प्रत्येक मजदूर उसी मुस्तदी से काम करता हुआ पाया गया। मालूम पड़ता था कि जैसे सारे के आदमी मशीनों में ढले हुए हों और मुस्तदी से काम कर रहे हों।
इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो इनका घरेलू जीवन भी देखा जाए।
इतना काम करने के बाद में, इतना परिश्रम करने के बाद में तो आदमी को थक जाना चाहिए, चूर चूर हो जाना चाहिए, बेजार हो जाना चाहिए, बीमार हो जाना चाहिए। आखिर ये बीमार क्यों नहीं होते? थककर चूर चूर क्यों नहीं होते? थकते क्यों नहीं?
जरा इसकी भी वजह तो देखूं। स्वामी रामतीर्थ जापानियों का घरेलू जीवन देखने गए। वहां उन्होंने बड़ा मजेदार दृश्य देखा।
मजदूर जैसे ही 5 बजे फैक्ट्री से छूट कर आया, घर का जीवन मानो, घरेलू जीवन मानो जैसे क्लब बना हुआ है।
मित्रों,
क्लब में आदमी मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, थकान मिटाने के लिए जाते हैं,
लेकिन वहां तो क्लब का सारे का ढांचा घरों में बना हुआ तैयार था।
जैसे पिताजी ने घर में प्रवेश किया, बच्चे ने गुलाब का फूल लगा दिया,
छोटी वाली बच्ची आई तो पियानो उठा लाई, बीबी ने गरम चाय बना दी,
किसी ने कुछ और काम कर दिया,
बस पियानो बजने लगा और नाच होने लगा, बच्चे नाचने गाने लगे,
घर में मस्ती का माहौल बन गया।
आधे घंटे के भीतर सब फ्रेश हो गए। फिर खाने पीने की बारी आई।
सारी थकान को दूर करने के बाद में इस तरीके से वह मजदूर हंसी खुशी के साथ में जीवन यापन करने लगा। मजे में सोता, रात में गहरी नींद आती,
8 घंटे की नींद लेता,
सवेरे उठता और अपने काम पर चला जाता। उन्होंने समझ लिया कि इन लोगों के पास वे चीजें हैं जिनको अध्यात्म कहते हैं। इन्होंने अध्यात्म का पहला वाला पाठ पढ़ लिया है।
दूसरे दिन टोक्यो विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान हुआ।
उन्होंने कहा कि अध्यात्म का पहला वाला पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग उसमें पारंगत हो गए।
पारंगत होने का सबूत यही है कि अध्यात्म का जो लाभ मिलना चाहिए था वह यहाँ हर आदमी को मिला हुआ है। पूरा जापान समृद्ध संपन्न है। मित्रों, जापान का हवाला मैंने इसलिए दिया है कि हमको अगर शक्ति की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, दौलत की जरूरत हो, ज्ञान की जरूरत हो, शिक्षा की जरूरत हो, भौतिक वस्तुओं की जरूरत हो, जिनको हम और आप अध्यात्म का फल मानते हैं।
असल में हम अध्यात्म को समझते नहीं। असल में अध्यात्म की हमें कोई जानकारी नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि भगवान से हमारा दूर का रिश्ता भी नहीं है। हम कहते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, बेटे आप बिल्कुल भी नहीं करते। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप भजन करते होते तो आपका यह हाल ना होता।
नहीं साहब, हम भगवान जी को जानते हैं।
नहीं बेटे,
तू नहीं जानता।
आप पत्थर के खिलौने को जानते हैं और मंदिरों को जानते हैं और फोटो एवं तस्वीरों को जानते हैं। भगवान से आपकी कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है।
मित्रों,
प्रायः लोग दो शिकायतें करते रहते हैं। पहली बात वे यह कहते हैं कि भजन करने के लिए हमको समय नहीं मिलता और दूसरी बात यह कहते हैं कि भजन करने में हमारा मन नहीं लगता। जो आदमी इस तरह की बात कहते हैं उनके बारे में मुझे संदेह होता है। असल में वे भगवान को नहीं जानते।
जानते होते तो शिकायत करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती।
आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी आए तो आपको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
फुर्सत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ UOPO के गवर्नर ने DOMO के माध्यम से खबर भेजी, संदेश भेजा कि हमने आपके यहाँ आने का एक घंटे का कार्यक्रम बना लिया है।
ठीक है, हमको मालूम नहीं था कि आप कब आने वाले हैं।
चूंकि वहाँ से खबर आ गई थी कि वे हमारे यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमने फौरन इंतजाम किया। दूसरे जो जरूरी काम थे फौरन बंद कर दिए।
वे आने वाले हैं, अतः उनके स्वागत का इंतजाम करना चाहिए।
हमने उनके बैठने का इंतजाम किया।
चाय के लिए बर्तन थे, उन्हें तलाश किया।
हमारे यहाँ खराब पुराने बर्तन थे, किराए के बर्तन मंगाए, शामियाना लगवाया, अपने अन्य सारे के कार्यक्रम बंद कर दिए। तो महाराज जी, आपको फुर्सत मिल गई। हाँ बेटे, हमने फुर्सत निकाल ली। कई जरूरी काम थे, चिट्ठियाँ लिखनी थी, लेख भी लिखना था।
लेकिन इन्हें कल लिख लेंगे, अभी नहीं जाएंगी तो कल चली जाएंगी, कहाँ भागी जाती हैं। इस तरह हमने समय निकालकर सारा इंतजाम कर लिया।
मित्रों,
आपके पास बैठने के लिए भगवान आए और आपको यह कहना पड़े कि हमको फुर्सत नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ एक है कि भगवान से आपकी कतई जान पहचान नहीं है। आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि भगवान बंदर को कहते हैं या आदमी को कहते हैं। भगवान को यदि आपने जाना होता तो आपको यह न कहना पड़ता कि अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत ज्ञान के स्वामी, ऊंचा उठाने वाली शक्ति के पास बैठने की फुर्सत आपके पास नहीं है।
नहीं महाराज जी,
मेरा मन नहीं लगता।
जाहिल कहीं का मन नहीं लगता। अच्छा, देखते हैं कि आपका मन लगता है कि नहीं। मैं नोट फेंकता हूँ, जरा इसे गिनकर बताना। अगर आपकी गिनती सही होगी तो जितने रुपये एक घंटे में आप गिन लेंगे उतने रुपये मैं आपको दे दूंगा। अगर गिनती सही नहीं होगी तो नहीं दूंगा।
देखना, ठीक से गिनना। हाँ महाराज जी, ठीक से गिनूंगा।
क्यों बेटे, नोट गिनने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
हाँ महाराज जी,
मन लग रहा है। नोट उठा उठा कर रख रहे हैं, हमारा ध्यान और कहीं नहीं जाता, केवल नोट गिनने की तरफ लगा है।
मित्रों,
भगवान के पास बैठने की बात आप समझते होते तो यह शिकायत नहीं करनी पड़ती कि हमारा मन नहीं लगता। मन उसमें लगता है जिसको हम प्यार करते हैं, जिसकी हम इज्जत करते हैं। मन कहाँ लगता है?
क्यों साहब, दुकानदारी में मन लगता है।
हाँ साहब,
दुकानदारी में लगता है। सवेरे चाय की दुकान खोलते हैं, 5:30 बजे वाला पैसेंजर आता है, हम उस पर निगाह रखते हैं।
भाई साहब आइए, हमारे यहाँ चाय तैयार है।
देखिए कैसी बढ़िया चाय है, 40 पैसे में सब जगह मिलती है पर हम 35 पैसे में देते हैं।
आइए तो सही, बैठिए और इसे चख करके देखिए, पैसे पीछे देना।
इसमें मन लगता है लेकिन भजन में मन नहीं लगता, क्या कारण है?
बेटे कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि आप भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते।
यदि जानते होते तो मजा आ जाता।
हमको जानकारी का अभाव है लेकिन हम क्या कर सकते हैं? भगवान की बावत अगर जानकारी रही होती तो आपने अपने आप को क्या से बना लिया होता और जाने क्या से कर लिया होता?
मित्रों,
भगवान के 3 हिस्से हैं।
एक जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। कभी हमें स्थूल आवश्यकता पड़े तो हमको कर्मयोगी बनना चाहिए, हमको परिश्रमशील बनना चाहिए, हमको मेहनतकश बनना चाहिए, उद्योगी बनना चाहिए।
अगर आप उद्योगी बनेंगे तो आप जो चीज चाहते हैं वह हर चीज आपको मिलती हुई चली जाएगी।
फिर आपको दुनियावी चीजों की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी।
फिर आपको यह करने का कोई मौका नहीं मिलेगा कि हमें दुनियावी चीजों की आवश्यकता है। आपकी सेहत खराब हो गई है तो सेहत की दवा कहाँ हो सकती है। अपने शरीर को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने की तमीज, शरीर से ठीक तरीके से काम कैसे लिया जा सकता है, परिश्रम कैसे किया जा सकता है, इसके बाबत आप जानें।
फिर आपका शरीर ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कोई एक राजा थे।
एक बार वे किसी गांव में गए। गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया।
बेचारे की जान पहचान भी नहीं थी। आइए, हम आपको खाना लिखाएंगे, दूध पिलाएंगे।
आप बड़े अच्छे आदमी मालूम पड़ते हैं।
गांव वालों ने खूब स्वागत किया। राजा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि गांव वाले बड़े भले हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं,
इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए,
सहायता करनी चाहिए।
सवेरे जब राजा चलने लगा तो उसने कहा, किसानों, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। मालूम नहीं, कोई अच्छे आदमी मालूम पड़ते हैं आप।
नहीं भाई, हम इस राज्य के राजा हैं।
अच्छा, हमको नहीं मालूम था।
मालूम होता तो हम और भी अच्छी चीजें आपको खिलाते।
नहीं भाई, जो आपने खिला दिया वही काफी है। अब हम आपके गांव की सेवा करेंगे।
क्या सेवा करेंगे? आपकी सेवा के बदले हम इस गांव में एक दवाखाना, एक अस्पताल बना देंगे।
अच्छा, बनवा दीजिए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि इस गांव में एक अस्पताल बना दीजिए। शानदार अस्पताल बन गया। सारे के डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट आदि सभी बनाकर तैयार कर दिए गए।
बढ़िया से डॉक्टर भेज दिए गए, नर्सें भेज दी गईं, सब इंतजाम कर दिया गया।
अब मरीजों की बारी आई।
गांव वालों से कहा कि चलिए, बीमार हुए और दवा लेकर जाइए। बहुत दिन हो गए, कोई नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा कि गांव में चक्कर लगाया जाए।
चक्कर लगाया?
उन्होंने कहा कि तुम लोग बीमार नहीं पड़ते हो।
हाँ साहब,
हम बीमार नहीं पड़ते तो दवा भी नहीं लेते।
पूरा एक साल व्यतीत हो गया।
राजा गांव वालों का मुआयना करने के लिए आया। देखे तो सही, हमारे अस्पताल में क्या क्या तरक्की हुई है, देखे हमारे अस्पताल में लोगों को क्या क्या फायदे हुए हैं। डॉक्टरों से पूछताछ की, जरा रिकॉर्ड तो दिखाओ।
यहाँ कितने ऑपरेशन हुए साहब?
कोई ऑपरेशन नहीं हुआ।
अच्छा, कितने एक्सरे हुए?
कोई नहीं हुआ।
कितने इंजेक्शन लगे? एक भी नहीं लगा।
वे नाराज हुए और कहने लगे कि आप लोग क्या करते रहे, आप लोगों ने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाए?
क्या करें साहब, यहाँ कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता।
गांव वाले बड़े जाहिल हैं, दवा लेने भी नहीं आते। गांव वालों को बुलाया, पूछताछ की।
क्यों भाई, क्या बात है, तुम लोग इलाज कराने क्यों नहीं आते, ऑपरेशन कराने क्यों नहीं आते?
अरे साहब, हम क्यों ऑपरेशन कराएं, जब हम बीमार ही नहीं पड़ते तो ऑपरेशन कराने की जरूरत ही क्या है।
राजा बहुत नाराज हुए।
उसने कहा कि आप लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते? लोगों ने कहा कि बीमार न पड़ने की दो वजह है, एक तो यह कि हम अपनी खुराक से कम खाते हैं,
जितनी भूख होती है उससे कम खाते हैं ताकि वह रोटी हजम हो जाए।
दूसरा, हम इतनी मशक्कत करते हैं, इतना श्रम करते हैं कि जो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है वह पसीने के रास्ते से निकल जाती है। इस तरह हम भूख से कम खाते हैं और पसीने के रास्ते बीमारियां निकल जाती हैं, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने भी कहा और राजा ने भी कहा कि जो लोग भूख से कम खाते हैं और जो लोग इतनी मशक्कत करते हैं कि पसीने के रास्ते सारी बीमारियां बाहर निकल जाएं, तो उनके लिए अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है। हर आदमी डॉक्टर हो सकता है अगर उसकी समझ में यह बात आ जाए कि श्रम के देवता, जिसको हमने ठोकर मारकर निकाल दिया है और परिणाम स्वरूप यह अभागा देश दरिद्रता का शिकार इसीलिए है। दरिद्रता की, गरीबी की और कोई वजह नहीं है, वजह केवल एक है कि परिश्रम करने से हमको नफरत है।
मित्रों,
हम में से जो आदमी परिश्रम करता है उसको हम भाग्यहीन समझते हैं, उसको हम अछूत समझते हैं, छोटा समझते हैं और बेकार समझते हैं। और जो आदमी हराम की रोटी खाता है, जो आदमी आराम से कुर्सी पर पंखे के नीचे बैठा रहता है, उसको हम मालदार समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं।
हमारी मान्यता यही है।
वास्तव में दरिद्र कौन है और दरिद्रता कहाँ रहती है? दरिद्रता बेटे हमारे दिमाग में रहती है। दरिद्रता किसे कहते हैं? जिसमें हमें काम करने से नफरत है। हर आदमी को काम करने से नफरत है। वह समझता है कि बड़प्पन इस बात में है कि आराम से समय काटा जाए और शरीर से पसीना बहाने की आवश्यकता न पड़े।
वस्तुतः यह स्वभाव ही दरिद्रता का कारण है। मित्रों, जब तक हमारे देश में यह स्वभाव रहेगा, जब तक यह मानसिकता रहेगी, तब तक दरिद्रता हमारे देश से जा नहीं सकती।
हमारे देश के बच्चे जब हाईस्कूल पास कर लेते हैं तो अपने बाप के साथ खेती बाड़ी करने में, मशक्कत करने में अपनी तौहीन समझते हैं। वे कहते हैं कि आपके पास जमीन है तो इसको बेच दीजिए, किराए पर उठा दीजिए।
फिर बेटे तू क्या करेगा? मैं तो नौकरी करूंगा।
कहाँ नौकरी करेगा? हम शहर में नौकरी करेंगे। किसकी नौकरी करेगा?
125 रुपये की नौकरी करूंगा, 150 रुपये की नौकरी करूंगा।
बेटे तू जानता है कि इस महंगाई के जमाने 150 रुपये महीने में जहर भी खा करके नहीं मरा जा सकता। इस जमाने में महंगाई का क्या हाल है जानते हैं न?
नहीं साहब, जो मिलेगा वही करेंगे, पर नौकरी करेंगे।
बेटे क्यों नौकरी करना चाहता है?
इसलिए नौकरी करना चाहता हूँ कि वहाँ पंखे के नीचे बैठा रहूँगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वहाँ बाबूजी बना बैठा रहूँगा, साहब बना बैठा रहूँगा।
बेटे
सियार जब पागल हो जाता है तो पानी में डूबने के लिए भागता है। आखिर में जब उसके मरने के दिन आ जाते हैं, मौत आ जाती है, तो वह भागता है। भाग करके वह कहाँ चला जाता है? कहीं तालाब तलाश करता है और उसी में डूब जाता है, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह आज हमारी नई पीढ़ी पागल हो गई है,
शहरों में भागती है, जहां तपेदिक के कीड़े, जहां सीलन, जहां घुटन, जहां बीमारियां, जहां सिनेमा, जहां दूसरी दूसरी चीजें हैं, जहां मक्कारियां भरी पड़ी हैं।
देहात की स्वच्छ और निर्मल आबोहवा को छोड़ करके बाप दादे की तरह पसीना बहाने, मेहनत करने की अपेक्षा हम वहां भागते हैं और नौकरी करना चाहते हैं। आज हर आदमी नौकरी करना चाहता है। क्यों नौकरी करना चाहता है?
अरे
हमारे यहाँ काम कर लीजिए, लोहार का काम है।
नहीं साहब, आपके यहाँ नहीं करेंगे, हम वहाँ करेंगे जहाँ परिश्रम करना पड़े,
जहाँ पंखा चलता रहे।
हम समझ गए कि आपका क्या मतलब है।
मित्रों
क्या बात है, जो आदमी मशक्कत करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले हैं, उनको हम घृणा करते हैं। आप कौन हैं?
धोबी।
चल हट, हम नहीं छूते। तू कपड़ा धोता है, गंदा काम करता है, हम कपड़ा मैला करते हैं, इसलिए हम बड़े आदमी हैं, और तू कपड़े साफ करता है, इसलिए गरीब आदमी है। यह कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी भूल है कि जो मशक्कत करता है, मेहनत करता है, काम करता है, उसे छोटा माना जाता है, यह समझा जाता है। मशक्कत करना बहुत खराब बात है, इसलिए जितने भी श्रमिक हैं उनको हमने अछूत ठहरा दिया।
मकान बनाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, दूसरे अन्य काम करने वाले, जूते बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले आदि जो दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, उनको हमने अलग कर दिया।
उनसे कहा कि हम आपको नहीं छूना चाहते, आप हमारे यहाँ मशक्कत करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसलिए आप अछूत हैं। हमारे यहाँ पूर्वी इलाकों में ब्राह्मण हल नहीं चलाते।
ब्राह्मण हल नहीं चला सकता? क्यों?
क्योंकि यह परिश्रम का काम है। ब्राह्मण हराम की रोटी खाएगा, परिश्रम नहीं करेगा, जाहिल कहीं का क्या करेगा?
हराम की रोटी खाऊंगा, निमंत्रण खाऊंगा, लेकिन हल नहीं चलाऊंगा। मित्रों
क्या हुआ? यह देश जहाँ श्रम के प्रति, काम के प्रति वृत्तियाँ दूषित होती चली जाती हैं, घोर अंधकार भरा हुआ पड़ा है।
जहाँ हम अपनी कन्या का ब्याह उस घर में करने को तैयार नहीं है, जहाँ लड़की को गोबर साफ करना पड़े, चक्की पीसना पड़े, हम अपनी लड़की को वहाँ देना चाहते हैं जहाँ उसे पलंग के ऊपर बैठकर राज्य करने का मौका मिले, जहाँ उसे खाना पकाने वाली नौकरानी मिले, उसको बर्तन साफ करने वाली मिले, झाड़ू लगाने वाली उसको मिले, हर काम करने वाली उसको मिले। साहब
हमारी बेटी बड़ी भाग्यवान है, अमीर घर में चली गई है। अमीर घर में क्या करती है? अमीर घर में बैठी रहती है, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता।
अच्छा बेटी, यह अकर्मण्यता दरिद्रता का प्रतीक है।
बेटे कोई काम न करने और बैठी रहने वाली तेरी लड़की को प्रत्येक डिलीवरी में ऑपरेशन कराना पड़ेगा।
चक्की पीसती है ना?
नहीं साहब,
मेरी बेटी चक्की नहीं पीसती।
बड़ी भाग्यवान है।
भाग्यवान है तो जा अस्पताल,
ऑपरेशन कराना पड़ेगा। भाग्यवान होने की एक और बात है, एक और निशानी है।
क्या? बस महीने में 32 इंजेक्शन लगवाना।
महीने में 30 दिन होते हैं, 2 फालतू होते हैं।
एक इंजेक्शन यहाँ और एक इंजेक्शन वहाँ लगवाना।
अरे भाई
मर गई, ठहर जा अभी और लगेगा।
परिश्रम से जी चुराती है, बैठी बैठी हराम की रोटी खाती है और कहती है कि बड़ी भाग्यवान हूँ।
मित्रों
ये मनोवृत्तियाँ हमारे देश में गहरी जड़ें जमा कर बैठ गई हैं।
यह हमारे दरिद्रता की निशानियाँ हैं।
दरिद्रता की इन निशानियों को मिटा देना हमारा और आपका काम है। अगर हम अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें इन दरिद्रता की निशानियों को मिटाना होगा।
समृद्धि आध्यात्मिकता का पहला गुण है।
यह अलग बात है कि हम आपका खाएं नहीं, वरन आपको खिलाएं।
अध्यात्मवादी गरीब तो होते हैं लेकिन दरिद्र नहीं होते।
गरीब में और दरिद्र में क्या फर्क है?
दरिद्र में और गरीब में बेटे जमीन और आसमान का फर्क है।
गरीब उसे कहते हैं जिसके अंदर कमाने की योग्यता है, सामर्थ्य है और वह कमाता भी है, लेकिन स्वयं खाने का इच्छुक नहीं है, किंतु दूसरों को खिलाने का जायका तलाश करना चाहता है।
खिलाने का भी एक जायका है।
मैं जानता हूँ कि खाने का अपना जायका है, लेकिन दुनिया में खिलाने का भी अपना जायका है।
बेटे,
बच्चे के खाने का जायका होता है। वह कहता है, बाबूजी,
टॉफी लेते आना। हाँ, लाएंगे। भाई साहब, पहले आप जलेबी लाते थे, अब नहीं लाते।
जीजा जी,
जब आप पहली बार हमारे यहाँ आए थे तो हमारे लिए मिठाई लाए थे, लेकिन अब की बार आप नहीं लाए।
बेटे, बच्चा हरेक से मांगता है।
बालक को खाने का जायका होता है, लेकिन खिलाने का जायका उनको होता है, बेटे, जो बड़े होते हैं।
वे खिलाने पर आ जाया तो अपने पिताजी को खिलाते हैं, अपनी माताजी को खिलाते हैं, अपने भाई को खिलाते हैं, अपनी बहन को खिलाते हैं, अपनी औरत को खिलाते हैं। जब लोग कहते हैं कि अरे साहब, आपके कपड़े फटे हैं, आपके क्या हाल हो गए हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, इन सबको दे करके फिर आप खाते हैं, भला यह भी कोई बात है? अरे भाई, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो औरों को क्या पहनाएंगे? यह क्या बात है? यह गरीबी है जिसमें आदमी कमाता तो है, पर स्वयं खाने का जायका लेने की अपेक्षा खिलाने के जायके को अधिक अच्छा मानता है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो खाने के जायके से नफरत करते हैं, पर खिला सकते हैं। कौन खिला सकता है?
जिसके पास वह सामर्थ्य है।
उसी के मन में यह वृत्ति पैदा होती है कि दूसरों को क्या खिलाना चाहिए, लेकिन जिसका अपना ही पेट खाली है, वह आदमी दूसरों को क्या खिला सकता है?
बुभुक्षितः किम न करोति पापम, अर्थात भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता? भूखा आदमी किसको दान दे सकता है?
किसकी सहायता कर सकता है? किसी सेवा कर सकता है? किसका भला कर सकता है?
इसलिए मित्रों, पहला गुण आध्यात्मिकता की पहली चीज जो होती है वह यह कि आदमी को इस लायक होना चाहिए कि वह संपन्न बना रह सके।
हम नहीं खाते, औरों को खिलाते हैं, ठीक है, मर्जी की बात है।
खाने का भी जायका है, लेकिन खिलाने का भी अपना जायका है।
हम आपके घर जाएं और आप हमें मिठाई खिलाएं, बिस्किट खिलाएं। और साहब,
लेकिन खिलाने का भी अपना जायका है।
हम आपके घर जाएं और आप हमें मिठाई खिलाएं, बिस्किट खिलाएं। अरे साहब, आप बहुत अच्छे हैं।
आप वही हैं ना जिन्होंने हमें दालमोट खिलाई थी?
एक बार जब हम आपके घर गए थे तब आपने जलेबी खिलाई थी, कचौड़ी खिलाई थी और चाय पिलाई थी।
हाँ साहब,
याद है। यह खिलाने का जायका है। खिलाने का जायका कभी आपको लग जाए तो जब आपके यहाँ कोई दावत होती है, निमंत्रण होता है, तो आप सुबह से शाम तक लोगों को खिलाते रहते हैं और स्वयं भूखे रहते हैं। लोग बुला रहे हैं, आइए साहब।
आइए बाबूजी, चाय पीजिए, रसगुल्ला लीजिए। बेटे, 50 पैसे का रसगुल्ला मुफ्त में खिला रहे हैं।
यह 50 पैसे नहीं अखरते।
ये हमारे बॉस हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे बहनोई हैं, जाने कब आएंगे?
अरे भाई, 50 पैसे जेब से जा रहे हैं और आप रसगुल्ला खिला रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
साहब, खिलाने का जायका ही अलग होता है।
खिलाने का मजा ही अलग होता है। खिलाने का आनंद ही अलग होता है। बेटे, खिलाने का जायका उनको आ जाता है जिनको हम संत कहते हैं। संतों को खाने की अपेक्षा खिलाने का जायका अच्छा मालूम पड़ता है, इसलिए वे प्रसन्न रहते हैं, इसलिए वे गरीब मालूम पड़ते हैं,
उनका मानसिक विकास हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 500 रुपये की नौकरी मिली थी।
उन्होंने घर वालों को बुलाया और कहा कि 50 रुपये में हमको गुजारा करना चाहिए। हमारा देश जिस गरीबी में रहता है उसी में हम भी गुजारा करें तो ठीक है। हम 50 रुपये में गुजारा करेंगे और 450 रुपया महीना उन लोगों को देंगे जो हमारी अपेक्षा इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कलकत्ता के दूसरे लोगों को खबर भेज दी कि जो बच्चे अपने माता पिता से सहायता प्राप्त न कर सकते हों, कॉपी पेंसिल न खरीद सकते हों, मिट्टी का तेल न खरीद सकते हों, वे हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं।
सारे के गरीब बच्चे आने लगे। बच्चे भी उन दिनों शरीफ थे, भले आदमी थे।
आजकल के बच्चे होते तो पैसे भी ले जाते और चप्पल भी उठा ले जाते। वे आज जैसे बच्चे नहीं थे।
उस जमाने में उनमें शराफत थी।
बच्चे आते और कहते कि पिताजी, इस महीने हमारे घर से फीस नहीं आई है,
हमको पैसे दे दीजिए।
कितनी फीस है?
12 आने। अच्छा, ले जा। पिताजी,
हमारे पास कॉपी भी नहीं है, किस पर लिखें?
अच्छा चल, यह भी ले जा।
450 रुपये वे उनको दे देते, बच्चों के लिए खर्च कर देते।
कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
वे 50 रुपये में गुजारा करते थे और 450 रुपये हर महीने विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए खर्च कर देते थे।
मित्रों, आपकी दृष्टि में ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े पागल थे, बड़े बेवकूफ थे?
वे गरीबी में रहते थे, कंदाली में रहते थे, पुराने कपड़े पहनते थे और मामूली में गुजारा करते थे।
अगर आपकी अक्ल होती तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 500 रुपये नौकरी के और 500 रुपये चालाकी और बेईमानी के, अर्थात 1000 रुपये इकट्ठे करते।
और फिर उसका क्या करते? सिनेमा, बढ़िया पैंट पहनते और बीबी के लिए सोने का जेवर बनवाते। हम और आप जाहिल और दुष्ट हो सकते हैं, किंतु संत नहीं हो सकता, क्योंकि उससे खिलाने का जायका आता है और आपको खाने का जायका आता है।
मित्रों,
हम अपनी कमाई खा जाते हैं, बाप की कमाई खा जाते हैं, भगवान की कमाई भी खाना चाहते हैं, गुरु की कमाई खाना चाहते हैं। हमारा पेट ऐसा जाहिल है जो किसी से भी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? इसलिए नहीं भरता कि हमारी तृष्णाएं बालपन जितनी छोटी हैं, इसमें हम जितना पाते हैं उसे खर्च नहीं करना चाहते, हम देना नहीं चाहते। बेटे, हम क्या कर सकते हैं?
संत गरीब तो होते हैं, पर दरिद्र नहीं होते।
उनके पास जाने के बाद में मनुष्य जाने क्या से हो जाता है? चाणक्य के पास जाने के बाद चंद्रगुप्त क्या से हो गया?
समर्थ गुरु रामदास के पास जाकर के शिवाजी जाने क्या से हो गए? रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर विवेकानंद जाने क्या से हो गए? गांधी जी के पास जाकर राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और न जाने कितने आदमी बादशाह हो गए, मालदार हो गए। गांधी जी नेता बने, गांधी जी नेता नहीं बने।
संत को नेता बनने की जरूरत नहीं है, संत को मालदार बनने की जरूरत नहीं है।
मित्रों,
संत के भीतर में शक्ति बनी रहती है, विश्वास बना रहता है कि हम कमाने लायक हैं।
अध्यात्म उस चीज का नाम है जो आदमी को ज्ञानी, विवेकशील, उदार, त्यागी, करुणाशील और परोपकारी बनाता है। ज्ञान की बात तो मैं आपको पीछे बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि आपको अभी ज्ञान की बात नहीं समझनी चाहिए।
मैं आपको त्याग की बात, वैराग्य की बात, परलोक की बात बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप उतना हजम नहीं कर सकेंगे।
इसलिए आपको वही बात बतानी चाहिए जो बालकों को बताई जानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने जो बात अमेरिका में कही थी वह 100% सही मालूम पड़ती है।
हिंदुस्तान तमोगुण में डूबा हुआ है, हम घोर तमोगुण में डूबे हुए हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे भीतर सक्रियता का विकास न हो सका। मित्रों, हमारे 3 शरीर हैं। पहला वाला अंश मनुष्य का स्थूल शरीर है।
इसके अंदर जो शक्तियां दबी हुई पड़ी हैं, वे भ्रम के रूप में दबी हैं।
श्रम से संपत्ति उत्पन्न होती है।
दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है।
सूक्ष्म शरीर की बात मैं बाद में बताऊंगा, जो हमारे ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हमको स्वर्ग मिलता है, जिसका हवाला मैं कल दे रहा था। तीसरा है हमारी जीवात्मा, हमारा अंतःकरण, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का जब विकास होता है तो हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है। आत्मा और परमात्मा में ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है, ऐसा आदान प्रदान शुरू हो जाता है कि आत्मा की संपत्ति परमात्मा की और परमात्मा की संपत्ति आत्मा की हो जाती है।
दोनों एक हो जाते हैं। नाला और गंगा जब मिल जाते हैं तो नाला गंगा हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं।
आत्मा अगर विकसित हो जाए तो भगवान और भक्त में कोई फर्क नहीं रह जाता,
दोनों एक हो जाते हैं।
यह बड़ी ऊंची स्थिति है, अभी आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।
अभी आपको उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है।
मित्रों,
अभी आपको पढ़ाने से क्या फायदा है और आपको बताने की क्या जरूरत है? हम आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी नब्ज रोज देखते रहते हैं कि आप क्या मांगना चाहते हैं। आप पैसे के अलावा और कोई चीज नहीं चाहते। हम समझते हैं कि आप दुनिया का यश चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सेहत चाहते हैं।
ये सब चीजें उसी दर्जे की हैं जिसको हमें पहले दर्जे के विद्यार्थी की बाबत कहना चाहिए। पहले दर्जे के विद्यार्थी को जो अध्यात्म सिखाया जाना चाहिए उसमें उसको कर्मयोग सिखाया जाना चाहिए। हम आपको कर्मयोग इसलिए सिखाना चाहते हैं कि आप संपत्तिवान बन जाएं, पैसे वाले बन जाएं,
मालदार आदमी बन जाएं। दुनिया में पैसे वाले आदमी, मालदार आदमी किस तरीके से बने हैं बताना। बेटे, दुनिया में मालदार बनने का एक ही तरीका है कि उन्होंने अपने काम करने की शैली का परिष्कार किया है। काम करना ही काफी नहीं है। हम और आप अधिक से जानते हैं तो काम करना जानते हैं, लेकिन काम करने के तरीके नहीं जानते।
हम काम करने की शैली को नहीं जानते जिससे कि हमारा काम हमको समृद्धि दे पाए, संपत्ति दे पाए। मित्रों,
हमारे काम हमको थकान देते हैं और हमको मजबूरी देते हैं। हमको काम करने का तरीका नहीं आता है। काम करने का जो तरीका है उसको अगर जान लिया जाए तो उसको कहते हैं कर्मयोग। अगर हम परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, तो उसको कहते हैं मेहनत, मशक्कत। परिश्रम करने से उतना ही लाभ मिलता है, जो कि थोड़ा सा हो सकता है। कोल्हू का बैल सारे दिन काम करता, पसीना बहाता है। हमारे और आप जैसे आदमी ढेरों के काम करते हैं और काम करने के बाद बेहद थकान आती है। अरे साहब,
मर गए,
क्या काम करना पड़ा। अरे साहब, हम वहाँ कार्यालय में नौकर हैं, क्या काम करते हैं। दफ्तर में LDC क्लर्क हैं।
साहब,
फाइलों की लिखा पढ़ी करनी पड़ती है,
सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं।
कितना काम करना पड़ता है, 7 घंटे काम करना पड़ता है। कभी कैंटीन में जा बैठते हैं, तो कभी कहीं टाइम पास करते हैं। बड़ा बंधन है, काम से कब पिन छूटेगा।
मित्रों,
काम के प्रति हमारा उत्साह, काम के प्रति हमारी जागरूकता, काम के प्रति हमारा प्रेम जो होना चाहिए, उसका अभाव रहता है। अभाव रहने से क्या हो जाता है,
हमारे शारीरिक मशक्कत का जो थोड़ा सा लाभ मिलना चाहिए वही मिलता है, लेकिन जो उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए, संपन्नता होनी चाहिए, जो मूल्य होने चाहिए जिसके बदले में पैसा मिलता है, वह तो हमारे भीतर है ही नहीं।
जो केवल थके हुए मन से, हारे हुए मन से, लापरवाही के मन से, भार ढोने के मन से किसी तरीके से काम पूरा कर लेते हैं, बेटे यह काम नहीं है, यह काम का चौथाई हिस्सा भी नहीं है। बया नामक एक पक्षी होता है,
कभी आपने उसका घोंसला देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख कर आना।
होता तो छोटा सा है, लेकिन घोंसला कितना मजेदार बनाता है।
तबीयत में आता है कि घोंसले को देखते ही रहें।
उसके अंदर न कहीं पानी जाने की गुंजाइश होती है, न आंधी तूफान का भय रहता है। पक्षी ऐसा मस्त सोता रहता है कि आंधी आए तो क्या,
तूफान आए तो क्या,
न हिलता है, न डुलता है, गिरने की बात ही नहीं उठती।
मित्रों,
कबूतर भी एक पक्षी है, वह भी घोंसला बनाता है। बया पक्षी जरा सा होता है, किंतु कबूतर बड़ा होता है। उसकी चोंच भी बड़ी होती है, पंख भी बड़े होते हैं, पंजे भी बड़े होते हैं। कबूतर लकड़ियां बीन बीन कर लाता है और अपना घोंसला बनाता है, घोंसले पर अंडे रखता है। बस जरा सा हवा का झोंका आया और अंडे के ऊपर घोंसला, घोंसले के ऊपर कबूतर, सब टूट फूट करके बराबर हो जाता है। 50% कबूतरों के बच्चे और अंडे इस तरीके से खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनके घोंसले कच्चे और कमजोर होते हैं।
घोंसले नीचे गिरे और बच्चे मरे और अंडे फूटे, कबूतर को फिर से दोबारा घोंसला बनाना पड़ता है।
इसका क्या मतलब है बेटे। इसका मतलब यह है कि बया पक्षी के पास घोंसला बनाने की कोई मशीन नहीं है।
नहीं गुरुजी, हमने एक दिन घोंसला बनाने की एक मशीन देखी थी।
वह ऐसी मशीन है जो बिजली की मोटर से चलती है और घोंसला बना देती है, कहीं नहीं बनाती। वह केवल चोंच से बनाती है, लेकिन वह मुस्ती से बनाती है, होशियारी से बनाती है, मन लगाकर बनाती है, तबीयत लगाकर बनाती है।
मित्रों,
तबीयत से किया हुआ काम कितना शानदार और मजेदार होता है, मन लगाकर किया हुआ काम कितना शानदार होता है। तबीयत से मन लगाकर यदि आप काम करेंगे तो देखना कि आपका श्रम कितना सार्थक हो जाएगा और क्या से क्या होता हुआ चला जाएगा। बेमन से काम किया जाएगा तो काम में न मजा आएगा और न रस आएगा। मैं क्या कह रहा था आपसे, यह कह रहा था कि काम करने की शैली जिसको हम कर्मयोग कहते हैं, कर्मयोग उस समय होता है जिस समय आदमी अपने परिश्रम को बेगाड़ समझ करके नहीं, भार समझ करके नहीं करता, वरन इसलिए करता है कि यह उसके लिए प्रेस्टीज पॉइंट है। यह आपके काम करने की क्वालिटी पर निर्भर है। आप कम पैसे देते हैं तो हम आपसे झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन हम आपके काम को खराब नहीं कर सकते। हम आपका काम कैसे खराब कर सकते हैं, यह तो हमारा प्रेस्टीज पॉइंट है,
हमारे सम्मान का सवाल है,
इसे हम खराब नहीं कर सकते। आपने कम पैसा दिया है, गलती की है, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, हम आपको पूरा काम सही करके देंगे,
अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य सही करके देंगे।
देखिए हम कैसा बढ़िया काम कर सकते हैं।
मित्रों, काम के प्रति जब आपको यह जिम्मेदारी, यह भाव पैदा हो जाए, तब मैं यह कहूंगा कि आपने कर्मयोग का पहला वाला पाठ पढ़ लिया।
वह काम जो तबीयत से किया जाता है, मन से किया जाता है, निष्ठा से किया जाता है और इस तरह से किया जाता है जिसको हम भगवान कहते हैं,
वक इस वशिप अर्थात काम का पूजा बनता है।
जब उसको तबीयत से किया जाए, यह मानकर किया जाए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता और बड़ा भी नहीं हो सकता। एक कथा जो हर बार याद आ जाती है, जिसमें कि योगाभ्यास का महत्व बताया गया है। कथा इस प्रकार है,
एक स्वामी जी थे,
जंगल में तप कर रहे थे।
उनको तप करते करते चमत्कार आ गए। आंख उठाकर ऊपर देखा तो पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया जल गई।
उनको अभिमान हो गया कि हम बहुत बड़े योगी हैं।
किसी आदमी के घर पर गए, भिक्षा मांगी। स्त्री अंदर अपने बीमार पति को रोटी खिला रही थी। बोली, अभी आप ठहरिए, अभी मैं योगाभ्यास कर रही हूँ, पूरा करने के बाद आपको भोजन कराऊंगी।
योगाभ्यास भी कर रही है और बातचीत भी कर रही है। योगी ने खिड़की से आंख उठाकर देखा और बोला, अरे तू तो यह कर रही है।
हाँ महाराज जी, मैं योगाभ्यास कर रही हूँ। अभी आप चुप बैठिए।
मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ कि आप मुझे जला देंगे। यह बात तुझे कैसे मालूम पड़ी? योगिनी हूँ, तू समझता क्या है?
बाबा जी बैठे रहे। जब वह अपने पति की सेवा करके आई तो भिक्षा दिया।
उन्होंने भिक्षा तो ले ली, पर एक बात पूछा कि आपने कैसे जान लिया कि मैंने चिड़िया को अपनी दृष्टि से जला दिया था?
योगाभ्यास करती हूँ। क्या योगाभ्यास करती हैं?
हाँ, मेरा योगाभ्यास यह है कि मैं समझती हूँ कि मेरा जो काम पड़ा हुआ है उसे मैं अपना उत्तरदायित्व समझती हूँ, जिम्मेदारी समझती हूँ, अपने को और समाज की एक कड़ी समझती हूँ और इसका लाभ पूरे समाज को मिलने वाला है।
मेरी जीवात्मा इस जिम्मेदारी को किए बिना नहीं रह सकती,
इसलिए मैं करती हूँ।
ठीक है, यह योगाभ्यास मुझे भी सिखा दीजिए। हम तो नहीं सिखा सकते, आप हमारे गुरु तुलाधार वैश्य के पास चले जाइए। तुलाधार वैश्य को गुरु बता दिया।
वह वहाँ गया तो देखा कि वह बनिया दुकानदारी कर रहा है। वह सारे दिन लौंग तौलने और हींग तौलने में लगा रहा। उसने कहा कि आप वहाँ मेरी शिष्या के पास भी गए थे? उसने कहा कि स्वामी जी बैठ जाइए और आपको चिड़िया वाली बात तो याद है।
बैठ जाइए, पीछे सिखाऊंगा। स्वामी जी बैठ गए। अच्छा भाई,
हमारी और आपकी जान पहचान नहीं है, फिर आपने यह कैसे जान लिया कि मैंने चिड़िया जलाई है?
अरे भाई, मैं योगी हूँ, देखते नहीं हैं, मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ। कौन सा योगाभ्यास कर रहे हैं? कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं। यह भी कोई कुंडलिनी जागरण है?
वह अपने कर्तव्य को ठीक तरह से पूरा करने के लिए शाम तक डटा रहा।
शाम को उसने कहा कि स्वामी जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप तो चाहते थे कि मैं योगाभ्यास सिखा दूँ, यही योगाभ्यास है जो मैं करता रहता हूँ।
दिलचस्पी से और ईमानदारी से काम करो, जिम्मेदारी से काम करो,
बस यही मैं करता हूँ।
यह कहाँ लिखा हुआ है? किस पुस्तक में है?
इसके लिए आप हमारे गुरु श्रीनाथ चांडाल के पास जाइए।
आपके गुरु कहाँ रहते हैं? बनारस में रहते हैं। स्वामी जी श्रीनाथ चांडाल के पास गए तो देखा कि वे झाड़ू लगा रहे हैं। जैसे ही स्वामी जी गए, उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वह तो आपको मिलेगा नहीं,
आपको अकेले बड़ी दिक्कत पड़ेगी, मैं मिला दूंगा।
उन्होंने कहा, अच्छा आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको तुलाधार वैश्य ने भेजा है? क्यों भेजा?
क्योंकि उसकी अचेली जो थी वह अपने पति को खाना खिला रही थी, आप वहाँ गए थे।
उसने क्यों भेजा? आपने चिड़िया जला दी थी। अरे आपको तो सब बातें मालूम है। हाँ, हमको भूत भविष्य की सब बातें मालूम है क्योंकि हम योगी हैं।
तो आपका योगाभ्यास कैसा है, हमें भी सिखा दीजिए। शाम को उसने योगाभ्यास सिखाया।
हम टट्टी साफ करते हैं, मेला साफ करते हैं और यह मानकर चलते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है। जिस काम को हम दिलचस्पी के साथ मन लगाकर नहीं करेंगे वह भार बन जाएगा और उस काम से हम दुखी हो जाएंगे तथा उसे छोड़ना चाहेंगे।
मित्रों, कर्मयोग का अर्थ है काम की क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी मेंटेन करने का मतलब है काम के प्रति हमारे मन में उत्साह पैदा हो।
अगर हमारे मन में काम के प्रति उत्साह पैदा न हुआ तो मैं नहीं जानता कि काम हमारे लिए किसी तरह का फायदेमंद हो सकता है। नहीं हो सकता है, ऐसा कार्य हमारे लिए बेगार के तरीके से बना रहेगा। इस तरह बेकार किए हुए काम से हम कोई खास फायदा उठा सकते हो, ऐसा मैं नहीं मानता।
जापान की बात एक बार फिर मुझे याद आ गई।
जापान में अमेरिका ने एक बार फैक्ट्री मालिकों से कहा कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री में सप्ताह में 6 दिन काम होता है, हम 5 दिन काम लिया करेंगे और नौकरी का जो पैसा आपको 6 दिन में मिलता है हम 5 दिन में दिया करेंगे। आप लोग 5 दिन काम किया करें और 2 दिन छुट्टी के लिए रखा करें। जापानियों ने कहा कि आप हमारे भीतर कमजोरी पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम हराम का पैसा खाएं और हराम के तरीके से समय गंवाएं, हराम के तरीके से घूमना फिरना शुरू करें। हम यह नहीं करने देंगे, चाहे आप पैसा दीजिए चाहे न दीजिए, हम काम पूरे 6 दिन ही करेंगे, नहीं तो हम फैक्ट्री नहीं जाएंगे। अच्छा तो आप 6 दिन का काम कीजिए, हम आपका 1 दिन का वेतन बढ़ा देते हैं। बढ़ा दीजिए, आपकी मर्जी, काम हम 6 दिन से कम नहीं कर सकते।
मित्रों, अगर 6 दिन से कम काम करेंगे तो हमारे पास दौलत आती हुई चली जाएगी।
धन हमारे पास आता हुआ चला जाएगा, संपत्ति आती हुई चली जाएगी लेकिन ठहरेगी नहीं, क्योंकि तब हम हरामखोर हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जमीन यहाँ की भी ऐसी है और गुजरात की भी ऐसी है,
किंतु गुजरात का किसान इतना संपन्न होता है। इसका एक उदाहरण मैंने वहाँ देखा जब मैं अहमदाबाद के कुछ आगे बड़ौदा एवं आनंद नामक जगह पर गया। वहाँ 4-5 मील आगे मांडवी नाम का एक छोटा सा गाँव है। वहाँ एक व्यक्ति थे, उनका 14 साल का एक बच्चा था जिसकी मृत्यु हो गई।
किसी ने उन्हें बता दिया कि गुरुजी के पास जाना, वे कोई आशीर्वाद दे देते हैं तो बच्चे हो जाते हैं।
वह मेरे पास आए, बोले गुरुजी, हमारे पास एक ही बच्चा था, वह मर गया।
हमारी स्त्री बहुत दुखी है, आप कुछ सहायता कर सकते हो तो कर दें। मैंने भी कह दिया कि भगवान करेगा तो हो जाएगा।
न जाने कैसे 14 वर्ष बाद उनके यहाँ बच्चा हो गया। जब मैं दोबारा आनंद गया तो उसने कहा कि आपको हमारे गांव चलना पड़ेगा। बेटे, क्या करेंगे तेरे गांव चलकर? नहीं गुरुजी, आपको एक बार चलना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलूंगा। मित्रों,
मैंने पूछा कि कितनी दूर तेरा गांव है।
बताया कि 6 मील। वह मोटर ले आया।
मैंने कहा, बेटे मेरे लिए मोटर क्यों ले आया? हम तो बैलगाड़ी में चले जाएंगे, हम तो किसान आदमी हैं।
गरीब आदमी हैं। नहीं गुरुजी,
आप मोटर से ही चलिए। मोटर से ही गया। मैंने कहा कि अब तो यहाँ शाम तक ठहरना है, यह किराए की गाड़ी है, ढेरों पैसा लग जाएगा।
इसको वापस कर दे।
नहीं महाराज जी, खड़ा रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं। मैंने कई बार टोका कि गाड़ी रखने से पैसे खराब होते हैं। उसने कहा कि अजी, आप तो बेकार परेशान होते हैं, खड़ी रहने दीजिए, चली जाएगी।
दूसरे दिन फिर गाड़ी वहीं खड़ी मिली।
मैंने पूछा कि तूने गाड़ी के पैसे दिए कि नहीं? नहीं साहब, पैसे थोड़े ही देने हैं, यह तो अपनी मोटर है।
अच्छा,
तू क्या करता है इस मोटर का?
गुरुजी,
हमारे बच्चे इससे कॉलेज पढ़ने जाते हैं,
हमारी लड़कियां पढ़ने जाती हैं।
मोटर पहुंचाने जाती है और फिर लेकर के आती है, मोटर और वह भी किसान की। तेरे पास कितनी जमीन है? 50 बीघे जमीन है।
कुल 50 बीघे। हाँ महाराज जी, 50 बीघे। बेटे,
हमारे यहाँ तो 100 बीघे जमीन होती है, पर लोग भूखों मरते हैं, नंगे फिरते हैं और कंगाल रहते हैं। यहाँ वहाँ कहीं देखो, यही हाल है।
तेरे यहाँ क्या है? चलिए गुरुजी,
हम दिखाते हैं।
उसकी 2 लड़कियाँ जो एमए
कर रही थीं और लड़के भी कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। खेत में जाकर देखा, वे लड़कियाँ लंगोट मारे हुए और पीछे कछनी काछे हुए तंबाकू के खेत में मजदूरों के तरीके से काम कर रही थीं और पसीना बहा रही थीं। उसने कहा, गुरुजी,
ये हैं बच्चे और उनका परिश्रम। गुरुजी,
जमीन तो सब जगह एक सी है, पर पसीना बहाने का यह कार्यक्रम आपके यहाँ नहीं है। आपका किसान हरामखोर और कामचोर है।
हरामखोर और कामचोर आदमी के पास संपत्ति आएगी? नहीं, ये गरीब रहेंगे, ये दरिद्र रहेंगे,
ये भूखों मरेंगे और कंगाल रहेंगे,
भिखारी रहेंगे और जाहिल रहेंगे, क्योंकि आदमी मेहनत नहीं करना चाहता।
बेटे, मैंने परिश्रम करने वालों को भी देखा और उन्हें भी देखा जो परिश्रम से जी चुराते हैं और कंगाल बने रहते हैं।
मित्रों,
जो परिश्रम किया जाए उस परिश्रम के साथ में दिलचस्पी का समावेश होना चाहिए, तभी सत्परिणाम मिलता है।
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक एक बार जर्मनी गए। वहाँ उन्होंने एक बच्चे से अखबार खरीदा। लड़का जो था, उसके बोलने चालने का तरीका एवं जो कपड़े पहने हुए था, उसे देखकर मालूम पड़ता था कि यह कोई संपन्न आदमी है, इसे किसी मालदार घर का होना चाहिए।
उन्होंने लड़के से पूछा कि यह शायद घर से नाराज होकर आया मालूम पड़ता है। उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा कि बेटे, तुम एक बात बता सकते हो?
हाँ, बताइए।
तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं और तुम क्या काम करते हो?
क्यों,
क्या बात है? तुम्हारे कपड़े लत्ते और बोलचाल से मालूम पड़ता है कि तुम्हें किसी संपन्न घर का होना चाहिए, क्योंकि इतने कम पैसे में अखबार बेचते हो, क्या वजह है? उसने कहा कि स्वामी जी,
आप हिंदुस्तान से आए हैं,
हिंदुस्तान के तरीके और जर्मनी के तरीके अलग अलग हैं। हम लोग जो हैं, हम और पिताजी हमेशा आदमी को यही बात सिखाते हैं कि उसको परिश्रमी होना चाहिए,
आदमी को उद्योगी होना चाहिए, आदमी को मेहनतकश होना चाहिए।
हमारे पास 2 घंटे बच जाते हैं। हमारे पिताजी हाईकोर्ट के जज हैं। वे कहते हैं कि जाइए, आप अखबार बेचकर पैसा लाइए। जो आदमी अपने हाथ पांव से पैसा कमाता है, वह खर्च करना जानता है। जिस आदमी ने अपने हाथ से नहीं कमाया या हराम का कमाया है, वह खर्च करना नहीं जानता,
वह उसको खराब करेगा,
जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, कुछ और करेगा।
मित्रों,
आपने अपने बेटों के लिए हराम का पैसा जमा करके रखा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह सारा पैसा जुआ खेलने में जाएगा, शराब पीने में जाएगा और सारा का सारा पैसा खानदान का सत्यानाश करके और तबाही करके जाएगा, क्योंकि वह हराम का पैसा है। हराम के पैसे को कोई हजम नहीं कर सकता, पाप की कमाई को कोई भी हजम नहीं कर सकता। हराम के पैसे और पाप के पैसे में मेरी समझ में कोई खास फर्क नहीं हो सकता। हाँ, तो मैं आपसे जर्मनी के विद्यार्थी के बारे में निवेदन कर रहा था कि वह अखबार बेच करके पैसे कमा रहा था और बाप के पैसे जोड़ जोड़ करके लॉकर में रखता था।
देखिए पिताजी,
हमने अपनी मशक्कत से कमाया है।
हाँ बेटे,
तूने मेहनत से कमाया है, अब तू खर्च करना भी जान जाएगा। जो पैसा कष्ट से मेहनत से कमाया जाता है, उसके बारे में यह ख्याल जाता है कि कैसे खर्च किया जाना चाहिए और कैसे नहीं खर्च करना चाहिए। इसलिए हम आपको जापान और जर्मनी की घटनाओं को बता रहे थे।
मित्रों,
इन उदाहरणों से हम में से प्रत्येक आदमी यह समझने की कोशिश करे कि हमको परिश्रम करना चाहिए और हमको मशक्कत करनी चाहिए।
फिर हमारी जिंदगी से तबाहियां खत्म हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी और हमारी वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। कौन सी?
जिसके लिए हम लक्ष्मी जी को तलाश करते रहते हैं कि लक्ष्मी जी कब आएंगी,
दीपावली के दिन क्या क्या लाएंगी। एक बड़ा वाला थैला लाएंगी,
उसमें क्या क्या भर करके लाएंगी।
पांच वाले नोट अलग, दस रुपये वाले नोट अलग, सौ सौ रुपये वाले अलग, सब इकट्ठा करके लाएंगी। बेटे, तू ऐसे थैले बना ले जिसमें दो रुपये वाले अलग और एक रुपये वाले अलग अलग डाल दे,
क्योंकि लक्ष्मी जी तो इकट्ठे लाती हैं।
महाराज जी,
मैं कैसे मनाऊं, लक्ष्मी जी तो नहीं आती हैं।
हाँ बेटे, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी।
लक्ष्मी जी कब आती हैं? दिवाली के दिन आती हैं। क्या लाती हैं?
रुपये लेकर आती हैं। हाँ महाराज जी,
लक्ष्मी जी रुपये की देवी हैं।
अच्छा बेटे,
तू कितने वर्ष का हो गया?
महाराज जी, 40 वर्ष का हो गया।
लक्ष्मी जी की पूजा करते करते कितने वर्ष हो गए? हमने 40 दिवाली पूजी है।
अच्छा, तो रुपया आया तेरे पास?
नहीं महाराज जी, हम तो गरीब के गरीब ही रहे, कंगाल ही बने रहे।
लक्ष्मी जी हमारे पास नहीं आई। अच्छा, तेरा बाप? गुरु जी, हमारा बाप 60 वर्ष तक जिया और वह भी लक्ष्मी जी को पूजता था।
और तेरे बाप का बाप?
महाराज जी, वह 56 वर्ष का होकर मरा था और वह भी लक्ष्मी जी को पूजता था।
अच्छा, तो वह मालदार रहा होगा?
नहीं, वह भी मालदार नहीं था।
बेटे, तीन पीढ़ियों से लक्ष्मी जी को पूजते चले आ रहे हो, 150 वर्ष बीत गए लेकिन गरीब के गरीब बने रहे,
कंगाल के कंगाल बने रहे।
बेटे, तुझे अभी और कंगाल रहना पड़ेगा।
150 वर्ष हो गए और 150 वर्ष कंगाली का पट्टा तेरे नाम अभी और लिखा हुआ है।
लक्ष्मी जी को पूजो महाराज जी।
कहाँ पूजूं? बेटे, जहाँ उनके रहने की जगह है वहाँ पूजन करो।
इस संबंध में एक कथा याद आ गई।
एक बार लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से जमीन पर आईं और लोगों से कहने लगी कि चलो भाई, वरदान लो,
जिसको जो चाहिए वरदान मांग लो, हम सबको वरदान देंगे।
सब तैयार हो गए और वरदान मांगने के लिए लाइन में खड़े हो गए।
हमको वरदान दीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। सब लाइन में खड़े हो गए। पृथ्वी माता आईं और उन बच्चों को मना किया। उन्होंने कहा, बच्चों, हमारा कहना मानो, ये अभागिन तुमको चौपट करके जाएगी और सत्यानाश करके जाएगी। तुमको इस जंजाल में नहीं फंसना चाहिए और अपने हाथ पांव की मशक्कत पर निर्भर रहना चाहिए,
अपना पसीना बहाना चाहिए और अपना गुजारा करना चाहिए। धरती की बात को किसी ने नहीं माना और कहा कि हम तो आपकी बात नहीं मानते, हम तो मनोकामना पूरी कराएंगे और वरदान ले करके आएंगे और जो फोकट में मिलता है, हराम में मिलता है, उससे गुजारा करेंगे।
लक्ष्मी जी खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि चलो भाई, जल्दी जल्दी चलो और अपनी अपनी मनोकामना बताओ। सबने एक ही मनोकामना बताए। क्या मनोकामना हो सकती है?
और कोई मनोकामना नहीं, बस अपनी एक ही मनोकामना है, रुपये और कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं।
बस रुपया मिल जाए तो हम उससे सब कर लेंगे, बच्चा नहीं हुआ तो दोबारा ब्याह कर लेंगे, बस आप रुपया दीजिए,
बाकी हम अपने आप पूरा कर लेंगे। रुपये से बच्चे किराए पर लिए जा सकते हैं, मोल लिए जा सकते हैं, सब हो सकता है।
लक्ष्मी जी आ गईं, सबको वरदान देने लगी। रुपया? हाँ रुपया लीजिए। सबको चेक काटती चली गईं। बियर चेक पाकर सब मालामाल हो गए और चले गए।
मित्रों, मालामाल होने पर क्या होता है? आदमी हरामखोर और कामचोर हो जाता है।
सारे आदमी हरामखोर और कामचोर हो गए, बस बैठे रहे। किसी ने टेलीविजन खरीद लिया, किसी ने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, सिनेमा जाने लगे,
किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने कुछ,
सब मौज उड़ाने लगे,
मजा करने लगे। किसान जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अरे भाई, खेत में कौन अपना सिर फोड़ेगा? घर में इतना पैसा रखा हुआ है, इसका क्या करेंगे?
सब लोग मौज करने लगे। खेती बाड़ी बंद कर दिया, काम धंधा बंद कर दिया।
थोड़े दिनों बाद क्या हुआ?
खेती बाड़ी बंद हो गई, बैल बिक गए, कुएं सूख गए,
जमीन परती हो गई। जिन लोगों के पास अनाज था, लोग खरीदते रहे, महंगा खरीदते रहे,
अन्ना और महंगा होता गया।
एक समय ऐसा आया जब सारा अनाज दुनिया से खत्म हो गया। फिर लोग भूखों मरने लगे और वह रुपया हर किसी के पास रखा रह गया। भूख से तड़प कर लोग मर गए।
किसी की